समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की नई और बेहद सुहावनी सुबह में, सुहावनी इसलिए क्योंकि ठंडक है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, और इस सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन आज सवेरे लेकर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और साथ हैं सायरा। नमस्कार सायरा।
नमस्कार देव, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स एज वेल हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी सुहावनी एज देव सेज मॉर्निंग ऑफ आज सवेरे। एंड यस, एज ऑलवेज वी ब्रिंग टू यू एन अमलकेशन ऑफ नॉट जस्ट न्यूज स्टोरीज बट ऑल्सो सम इंटरेस्टिंग स्टोरीज फ्रॉम योर वेरी ओन सिटी। देखेंगे आपके अपने शहर में क्या क्या हो रहा है इन आर मेट्रो न्यूज सेक्शन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स वी लुक फॉरवर्ड टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस शो इन विच वी रिमेंबर सम ऑफ द पर्सनैलिटीज हु ईदर हैव द बर्थ और death anniversaries or their birthdays and dekhenge itihas ke panno ko bhi palat ke ki aaj ke din kaun si wo important events hue the that make this day quite memorable. And well, to start off, let's begin with the headlines.
जी, शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज शाम 5:30 बजे मुंबई के ऐतिहासिक आजाद मैदान में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कल श्री फडणवीस ने महायुति गठबंधन में शामिल शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख अजीत पवार के साथ राज्यपाल से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री तथा कई केंद्रीय मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे।
In Jharkhand, the expansion of the cabinet of Hemant Soren government will take place today at 12:30 PM in Ranchi. A total of 11 ministers are scheduled to take the oath at Raj Bhavan. The governor, Santosh Kumar Gangwar, will administer the oath of office and secrecy to the ministers. JMM will have 6 ministers, Congress 4, and there will be 1 minister from the RJD. JMM General Secretary Supriya Bhattacharya said that the cabinet will witness all parts of Jharkhand.
भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक अपनी पत्नी रानी जेतसुन पेमा वांगचुक के साथ आज से 2 दिवसीय भारत दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का भूटान नरेश से मुलाकात करने का कार्यक्रम है। भारत और भूटान के बीच मित्रता और सहयोग के अनूठे संबंध हैं, जिनकी विशेषता आपसी समझ और विश्वास है। उनकी यात्रा दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करने और साझेदारी को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी।
Prime Minister Narendra Modi has expressed confidence that the close cooperation between India and the Gulf Cooperation Council would be further strengthened under Kuwait's ongoing presidency of the GCC. Foreign Minister of Kuwait Abdullah Ali Al Yahya called on Prime Minister at his official residence in Delhi yesterday. They discussed measures to enhance cooperation in trade, investment, energy, technology, culture, and strong people-to-people ties. Mr. Modi thanked the leadership of Kuwait for taking care of the 1 million strong Indian community living in Kuwait. Both the leaders have also exchanged views on the situation in West Asia and expressed support for early return of peace, security and stability in the region.
विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी कुवैत के विदेश मंत्री से कल शाम नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और कुवैत के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ करने के तरीकों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों और खाड़ी सहयोग परिषद GCC के साथ भारत के सहयोग पर भी चर्चा की। दोनों नेताओं ने विदेश मंत्रियों के स्तर पर सहयोग के लिए एक संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डोमेस्टिक रूफटॉप सोलर स्कीम PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana is set to surpass 10 lakh installations by March 2025. Ministry of New and Renewable Energy said that 6.3 lakh rooftop solar panels have been installed within 9 months of its launch. The ministry said the government has set a target to install 1 crore rooftop solar panels by March 2027. It said the states such as Gujarat, Maharashtra, Kerala and Uttar Pradesh have demonstrated exceptional progress reflecting robust infrastructure and stakeholder collaboration.
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सैटेलाइट में आई तकनीकी खराबी के कारण यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 अंतरिक्षयान के प्रक्षेपण के समय में बदलाव किया है। अब इसका प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-59 से आज शाम 4:12 पर किया जाएगा। इससे पहले इसका प्रक्षेपण कल शाम 4:08 पर निर्धारित था। विश्व में अपनी तरह की पहली पहल प्रोबा 3 में दो सैटेलाइट समाहित हैं, जहां से दो अंतरिक्षयान एक साथ उड़ान भरेंगे। ये सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करने के लिए 1 मिलीमीटर तक सटीक संरचना बनाए रखेंगे। इसरो के वाणिज्यिक विभाग न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को यह ऑर्डर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से मिला है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य सटीक संरचना में उड़ान भरना और सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करना है।
Assam government has announced a complete ban on serving and consuming beef in restaurants, hotels, public functions and other community spaces. State Chief Minister Hemant Biswa Sarma made the announcement, stating that the decision was finalized during a state cabinet meeting that approved amendments to the existing laws on beef consumption. During his address, CM Sarma said that it has been decided that beef will not be served in any restaurant or hotel, nor will it be allowed in any public function or public place in the state. Earlier, the decision was to stop eating beef near temples, but now it has been expanded to the entire state. Nobody will be allowed to eat beef in any community or public space, hotel or restaurant, the chief minister said in his address.
भारत ने पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप जीत लिया है। ओमान के मस्कट में कल रात फाइनल में उसने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 3-5 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने इस महाद्वीपीय टूर्नामेंट में 5वीं बार खिताब अपने नाम किया है। इससे पहले भारत ने 2004, 2008, 2015 और 2023 में ये चैंपियनशिप जीती थी। भारत की ओर से अरिजीत सिंह हुंदल ने 4 गोल किए और जीत के नायक रहे, जबकि दिलराज सिंह ने 1 गोल दागा। तो ये रही देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरें, और अब हम रुख करते हैं अपने महानगरों का, जहां से जानते हैं क्या खबरें हैं चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु से। सायरा बताएंगी।
यस, सो लेट्स स्टार्ट विद चेन्नई। अ 3-डे वर्ल्ड मैरिटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस WMTC किक्ड ऑफ यस्टरडे एट चेन्नई। इट इज हेल्ड वंस इन 3 years अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ वर्ल्ड मैरिटाइम टेक्नोलॉजी कांग्रेस। World Maritime Technology Congress is a global conference with a large participation and contribution from the global maritime sector. The Institute of Marine Engineers, India, Chennai branch hosts this prestigious conference. India is a fast-growing economy, and Chennai, being one of the oldest seaports of India and a center of trade, contributes to the GDP of the nation in a significant way. Chennai comes under the list of major Indian ports and has 2 to 3 fast-developing minor ports and shipbuilding yards in its hub. The expanding maritime trade has brought many ship owners, ship management and logistics companies to the city. Moving on to the city of Bangalore, Karnataka Minister for Medical Education, Skills and Livelihood, Dr. Sharan Prakash Patil, has asked the corporate sector to come forward and adopt government ITIs and impart employable skills to youngsters. He informed that 252 government ITIs have trained over 5,000 youngsters in terrace solar panel installation and maintenance under Pradhan Mantri Surya Ghar Muft Bijli Yojana, and the government is modernizing 10 government ITIs in partnership with the private sector. The old machinery is replaced with advanced equipment. The minister said that the trainers in ITIs are also undergoing training to update their teaching abilities, and the principal of these ITIs have attended workshops for overall improvement. And moving on to Hyderabad, in a landmark development for India's tech sector, Google LLC has announced plans to establish Google Safety Engineering Center, or GSEC, in Hyderabad. This state-of-the-art facility will be the first of its kind in the Asia-Pacific region outside Tokyo and only the 5th globally. The GSEC is set to become a global hub for cybersecurity, focusing on advanced research, AI-driven security solutions, and innovative online safety products. It is expected to play a transformative role in strengthening India's cybersecurity capabilities while generating thousands of direct and indirect employment opportunities. So, Dev, this was the latest buzz that I had from Chennai, Bengaluru, and Hyderabad. What is the latest that you have from Delhi, Mumbai, and Kolkata?
Ji, Saira. दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने फेज 4 के गोल्डन लाइन पर तुगलकाबाद एयरफोर्स लॉन्चिंग शाफ्ट और मां आनंदमयी मार्ग के बीच की सबसे लंबी भूमिगत सुरंग का निर्माण पूरा कर लिया है। डीएमआरसी ने बताया कि यह सुरंग तुगलकाबाद एयरपोर्ट कॉरिडोर का हिस्सा है। डीएमआरसी ने कहा कि सुरंग का निर्माण 105 मीटर लंबी सुरंग बोरिंग मशीन से किया गया है। निगम ने यह भी बताया कि यह सुरंग औसतन 16 मीटर गहरी बनाई गई है और इसमें 1894 रिंग्स लगाए गए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल साइबर धोखाधड़ी मामले में दिल्ली और आसपास के इलाकों में 10 स्थानों पर तलाशी ली, जिसमें लगभग 117 करोड़ रुपए की वित्तीय धोखाधड़ी शामिल है। सीबीआई के अनुसार अब तक की जांच से पता चला है कि विदेशों से काम करने वाले धोखेबाज भारत में पीड़ितों को निशाना बनाने के लिए वेबसाइट, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। वे अंशकालिक नौकरी घोटालों, कार्य आधारित धोखाधड़ी और प्रारंभिक निवेश पर उच्च रिटर्न के वायदों के माध्यम से लोगों को लुभाते हैं। तलाशी के दौरान एजेंसी ने धोखाधड़ी में शामिल संदिग्ध लोगों के परिसरों से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और वित्तीय रिकॉर्ड सहित आपत्तिजनक साक्ष्य जब्त किए हैं। सीबीआई ने यह भी कहा है कि सिंडिकेट के अन्य सदस्यों की पहचान करने और अवैध धन का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में कल वायु गुणवत्ता में सुधार रहा। कल शाम 7 बजे तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 172 के साथ मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया। हालांकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शहर के कुछ क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक का स्तर 200 के पार बना रहा। मुंबई का रुख करें तो महाराष्ट्र सरकार ने 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर मुंबई और उसके उपनगरों में स्थानीय अवकाश घोषित किया है। बुधवार को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आधिकारिक परिपत्र के अनुसार शुक्रवार को मुंबई और उपनगरीय जिलों में सभी सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। हर साल भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर अम्बेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। इस दिन दादर के शिवाजी पार्क में चैत्य भूमि पर बड़ी संख्या में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित होते हैं और इसके मद्देनजर मुंबई यातायात पुलिस ने वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। कोलकाता का रुख करें तो पश्चिम बंगाल सरकार पेयजल के दुरुपयोग को रोकने के लिए कदम उठा रही है। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के प्रभारी मंत्री पुलक रॉय ने बुधवार को विधानसभा में बताया कि इस मामले में राज्य में कुल 407 एफआईआर दर्ज की गई हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं इस मामले की निगरानी कर रही हैं। मंत्री ने यह भी बताया कि व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पेयजल का उपयोग करने वालों पर अधिकारी लगातार नजर रख रहे हैं। पेयजल के किसी भी दुरुपयोग की सूचना देने के लिए 2 व्हाट्सएप नंबर 8902052222 और 8902066666 जारी किए गए हैं। महानगरों से जुड़ी खबरों के बाद अब हम जान लेते हैं महानगरों के मौसम का हाल भी। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के भागों में आमतौर पर सामान्य मौसम रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री जबकि अधिकतम 26 डिग्री रहने के आसार हैं। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, कुछ जगहों पर बारिश होने की भी संभावना है। न्यूनतम तापमान 24 और अधिकतम 34 डिग्री रिकॉर्ड किया जा सकता है। कोलकाता में आंशिक बादल छाए रहेंगे लेकिन मौसम साफ और शुष्क रहेगा, मुख्यतः तापमान 32 और 26 डिग्री के बीच दर्ज किया जा सकता है। सायरा, बाकी महानगरों में मौसम कैसा रहेगा?
वेल, इफ वी टॉक अबाउट चेन्नई, देन द चेन्नई स्काई विल बी पार्ट क्लाउडी टुडे। टेम्परेचर इन चेन्नई विल होवर बिटवीन 25 एंड 34 डिग्री सेल्सियस। While Bengaluru is expected to have light rain today, apart from having a cloudy sky throughout the day, minimum temperature in Bengaluru was 18 degrees Celsius and maximum will be around 27 degrees. Hyderabad is expected to have a cloudy sky today with light rain or drizzle. Temperature in Hyderabad will hover between 22 and 28 degrees Celsius.
और मौसम के बाद हम बात करते हैं इतिहास में दर्ज आज के दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं की। तो आज है 5 दिसंबर और आज के दिन वर्ष 1943 में जापानी हवाई जहाज ने कोलकाता पर बम गिराए थे।
ऑन दिस डे इन 1931 गांधी जी लेफ्ट इंग्लैंड फॉर इंडिया एंड इन 1950 सिक्किम बिकेम अ प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया।
जी, और 1950 में ही आज के दिन फ्रीडम फाइटर कवि दार्शनिक अरविंद घोष का निधन हुआ था, जिनके बारे में हम बात करेंगे अब से थोड़ी ही देर में। और 1955 में टेलीफोन कॉल को हर घर तक पहुंचा देने वाली लंबी दूरी की एसटीडी सेवा 1955 में आज के दिन अस्तित्व में आई थी। कल्पना की जा सकती है सायरा कि आज किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में जहां पर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, लोग अपनों को और जरूरी काम के लिए किसी को भी वीडियो में देख सकते हैं, सीधे बात कर सकते हैं। और आज से लगभग 7-8 दशक पहले ये स्थिति शुरू हुई थी, तब कितनी खुशी हुई होगी लोगों को।
यस यस एब्सोल्युटली, एंड इनफैक्ट यू एंड आई वी बिलोंग टू दैट जनरेशन जब इवन एसटीडी कॉल्स आपको जो है एक पीसीओ नाम की चीज होती थी जो कि आज की जनरेशन, यस यस, जो आज की जनरेशन के लिए लोग अनथिंकेबल है। जो यू नो देयर यूज्ड टू बी अ कॉलिंग बूथ, अ पब्लिक कॉलिंग ऑफिस यू कैन से।
और हमने तो वो भी दौर देखा जब मोबाइल फोन पर इनकमिंग कॉल्स के भी चार्ज लगा करते थे।
दैट्स ट्रू।
लोगों को सोचकर फोन उठाना पड़ता था कि किस फोन को पिक करना है, किस फोन को नहीं उठाना है, क्योंकि इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा।
उसके लिए भी पे करना पड़ेगा। बट लेकिन यू सी दैट यू नो हाउ क्विकली टेक्नोलॉजी हैज, एंड इनफैक्ट व्हाट आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड देव, कि ह्यूमन माइंड में जो भी थॉट आती है तो आप उसको मे बी अभी प्रेजेंट टाइम्स में आपको वो चीज लगेगी कि अरे क्या वो जरूर बातें कर रहा है, बट जो भी थॉट आपके जहन में आई है वो किसी ना किसी वक्त पे आगे चल के वो मुमकिन हो जाती है। एब्सोल्युटली, बिकॉज इमेजिन इफ आर वी हैड टोल्ड आर ग्रैंड पेरेंट्स दैट वन डे यू वुड बी एबल टू सी समबडी सिटिंग इन अमेरिका ऑन योर palm, they would have probably disbelieved us. But even our grandparents today do video calling, isn't it? So that is the beauty of technology, though you can say the good aspects of technology. Moving on, and on this day in 1990, with the induction of 60 ministers, the Bihar cabinet became the largest ever cabinet in India with a total of 71 ministers.
और 71 की बात आपने कही तो 1971 में आज ही के दिन बांग्लादेश को एक देश के रूप में मान्यता मिली थी।
On this day, 1991, the government reduced the visa fees for the tourists that were intending to visit India. And also on this day, 1999, if you all remember that very, very tall, beautiful Miss World, yes, we are talking about Yukta Mukhi, one of the tallest, you can say, models that we had. And she was crowned Miss World on this day in 1999.
और वर्ष 2000 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति चुनाव में जॉर्ज बुश के पक्ष में फैसला दिया था। तो ये रही इतिहास की बातें, और अब हम बात करते हैं उन महान व्यक्तियों की, उन महान लोगों की जिनकी आज जयंती, पुण्यतिथि या फिर जन्मदिन है।
यस, एंड बिफोर वी स्टार्ट विद आवर लिस्ट, आई थिंक जस्ट लेट मी स्टार्ट विद द शेक्सपियर्स कोट देव, हु सेड दैट इफ म्यूजिक बी द फूड फॉर लाइफ, प्ले ऑन। और ये जो है बहुत ही एप्ट बैठता है ऑफ for the great, great, great musician and composer Mozart, whose death anniversary is today. And despite his short life, his rapid pace of composition resulted in more than 800 works that represented virtually every Western classical genre of his time. Many of these compositions are acknowledged as pinnacles of symphonic and chamber, operatic and choral repertoire. He is widely regarded as one of the greatest composers in the history of Western music, with his music admired for its melodic beauty, its formal elegance and its richness of harmony and texture. And we can say that he was a child prodigy, because from very on in his childhood, he was able to display his keenness and you can say his acumen in the world of music. At age 5, he was already competent on the keyboard and violin. He had begun to compose and performed before the European royalty at that age. His father took him on a grand tour of Europe and then 3 trips to Italy. By the age of 17, he was a musician at the Salzburg court, but grew restless and travelled in search of a better position. His search for employment led to positions in Paris, Munich, and again in Salzburg, during which he wrote his 5 violin concertos, and of course the concerto for flute and harp, as well as sacred pieces and masses. And we are hearing the symphony number 40 of Mozart right now. Thank you.
दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की आज पुण्यतिथि है। वो अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के 27 वर्ष रॉबिन द्वीप पर कारागार में रंगभेद नीति के खिलाफ लड़ते हुए बिताए। अश्वेतों को उनका अधिकार दिलवाने के लिए 1991 में कन्वेंशन फॉर अ डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका या कोडसा का गठन किया, जो देश के संविधान में आवश्यक परिवर्तन करने वाली थी। डी क्लार्क और मंडेला ने इस काम में अपनी समान भागीदारी निभाई। अपने इस उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1990 में भारत सरकार की ओर से नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अपने राजनीतिक विचारों और पिछड़ों के लिए अपने संघर्ष के कारण दुनिया भर के राजनीतिक जगत में नेल्सन मंडेला ने प्रसिद्धि पाई।
Yes, the great, great anti-apartheid activist and politician who also served as the first president of South Africa from the year 1994 to 1999. He was the country's first black head of the state and the first elected in a fully representative democratic election. His government focused on dismantling the legacy of apartheid by fostering racial reconciliation.
आधुनिक काल में भारत में अनेक महान क्रांतिकारियों और योगियों में अद्वितीय अरविंदो की आज जयंती है, जिन्हें अरविंद भी कहा जाता है। वो कवि और राष्ट्रवादी विचारक थे जिन्होंने आध्यात्मिक विकास के माध्यम से सार्वभौमिक मोक्ष का दर्शन प्रतिपादित किया। अरविंदो घोष एक महान साहित्यकार भी रहे। उनकी वृहद और जटिल साहित्यिक कृतियों में दार्शनिक चिंतन, कविता, नाटक और अन्य लेख समाहित हैं। श्री अरविंद के दर्शन को भी वेदांत के परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है। स्वानुभूति के अतिरिक्त वेद, उपनिषद और पुराण वस्तुतः उनके दर्शन के स्रोत रहे। उनका दर्शन सर्वस्वीकृति का वर्णन है। वे दार्शनिक और विचारक होने के साथ साथ योगी भी हैं। उनका दर्शन और योग जीवन की दिव्यता पर बल देता रहा। भारत की तात्कालिक सामाजिक चेतना को जगाते हुए उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक, धर्म और आध्यात्म के स्तर पर अपने जीवन काल में जो कार्य किए, वे भावी पीढ़ियों का भी मार्गदर्शन करते रहेंगे।
That's true. We are remembering Sri Aurobindo on his death anniversary, and as they've said, that he was a multi-faceted personality, not just a philosopher, yogi, but also a Maharishi, poet, educationalist, and nationalist. He joined the Indian movement for independence, and until 1910, he was one of its influential leaders, and then became a spiritual reformer, introducing his visions on human progress and spiritual evolution. He studied for the Indian Civil Service at the King's College in Cambridge, England, and after returning to India, he took up various civil service works under the Maharaja of the princely state of Baroda, and then became increasingly involved in nationalist politics in the Indian National Congress and the nascent revolutionary movement in Bengal with the Anushilan Samiti. So we're remembering Sri Aurobindo on his death anniversary.
और भारत के प्रख्यात चित्रकार तथा साहित्यकार अवनींद्रनाथ ठाकुर की भी आज पुण्यतिथि है। हम उन्हें भी नमन करते हैं। राष्ट्र से प्रेम करने वालों में से एक अवनींद्रनाथ ठाकुर ने सांस्कृतिक गुलामी से मुक्ति के लिए अपने अग्रज गगनेंद्रनाथ ठाकुर के सहयोग से 1907 में कोलकाता में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स नामक संस्था की स्थापना की। कला और चित्रकला की भारतीय पद्धति को अवनींद्रनाथ ठाकुर ने पुनः प्रतिष्ठित कर संसार में उसे उचित सम्मान दिलाया। और सायरा, सुप्रसिद्ध चित्रकार अमृता शेरगिल को भी हम आज याद कर रहे हैं। उनकी आज जयंती है। उन्होंने कैनवास पर भारत की एक नई तस्वीर उकेरी। अपनी पेंटिंग्स के बारे में अमृता का कहना था, मैंने भारत की आत्मा को एक नया रूप दिया है। ये परिवर्तन सिर्फ विषय का नहीं बल्कि तकनीकी भी है। अमृता ने इस प्रकार के यथार्थवादी चित्रों की रचना की जिनके पूरे विश्व में चर्चा हुई। उन्होंने भारतीय ग्रामीण महिलाओं को चित्रित करने का और भारतीय नारी की वास्तविक स्थिति को चित्रित करने का जो प्रयास किया, वो अत्यंत सराहनीय रहा। उनके चित्रों की विविधता उस समय और भी बढ़ गई जब उन्होंने दक्षिण भारत का दौरा किया। दक्षिण भारतीय ब्रह्मचारी और दक्षिण भारतीय ग्रामीण बाजार की ओर जाते हुए केले बेचने वाला आदि ऐसे अनेक चित्र इस परिवर्तन को दिखाते हैं। अमृता का जन्म हंगरी में हुआ था, लेकिन उनकी पेंटिंग्स भारतीय संस्कृति और उसकी आत्मा का बेहतरीन नमूना है। इनकी चित्रकारी को धरोहर मानकर दिल्ली के नेशनल गैलरी में सहेजा गया है। उनकी पेंटिंग्स यंग गर्ल्स को पेरिस में एसोसिएशन ऑफ द ग्रैंड सलून तक पहुंचने का मौका मिला।
Next on our list are two very great shayars of Urdu. And इससे पहले शायर की बात की जाए तो उनका एक बड़ा ही खूबसूरत सा शेर है, मेरे रोने का जिसमें किस्सा है उम्र का बेहतरीन हिस्सा है. यस, वी आर टॉकिंग अबाउट जोश मलिहाबादी. ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी वी आर रिमेम्बरिंग हिम एंड पॉपुलरली नोन एज शायरे इनकलाब. ही वॉज अ पोएट हु वॉज बॉर्न इन मलिहाबाद और लोगों को मलिहाबाद के आम ज्यादा याद आते हैं, लेकिन जो उर्दू से कह सकते हैं मोहब्बत रखते हैं उनको जोश मलिहाबादी याद आते हैं.
और सारे जितने बड़े बड़े नामों की चर्चा हम कर रहे हैं, यानी कि 5 दिसंबर को जिन लोगों का जन्म हुआ बड़े ही क्रिएटिव होते हैं.
Yes,
तो जिनका 5 दिसंबर को जन्म हुआ है वो खुश हो सकते हैं.
दैट्स ट्रू. एंड नोन फॉर हिज वेरी लिबरल वैल्यूज एंड चैलेंजिंग द एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर, जोश रोट ओवर 1 lakh कपलेट्स एंड मोर देन 1,000 रुबाइयां इन हिज लाइफ टाइम. यादों की बारात, विच इज हिज ऑटोबायोग्राफी, इज नोटेड फॉर इट्स फ्रैंक एंड कैंडिड स्टाइल. इनफैक्ट उनकी जो पर्सनैलिटी भी थी तो लोग कहते हैं वो बहुत ही कैंडिड थी. और कुछ लोग होते हैं जो आपको ठीक करते हैं बहुत ही संजीदा तरीके से, लेकिन जोश मलिहाबादी का एक बड़ा अलग अंदाज था. मसलन आपने सुना होगा बहुत से लोग आपसे कहते होंगे कि कैसे मिजाज हैं. तो ऐसे ही किसी ने पूछा जोश मलिहाबादी से, और भाई जनाब कैसे मिजाज हैं. एंड टू विच ही रिप्लाइड, मेरा तो एक ही होता है, एक वक्त में आपके कितने होते हैं. सो दैट्स हाउ ही करेक्टेड दैट. यू नोट से कैसे मिजाज है, बट कैसा मिजाज है. दैट्स हाउ ही करेक्टेड. सो दैट वॉज हिज कैंडिड स्टाइल एंड वी आर रिमेम्बरिंग जोश मलिहाबादी ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी. अनदर बिग शायर यू कैन से जो उसी बेल्ट से आते हैं, हमारी लखनऊ मलिहाबाद वाली बेल्ट से आते हैं, दैट्स असरारुल हक मजाज एंड नोन बेटर बाय हिज पेन नेम मजाज लखनवी. He is known for his romantic and revolutionary poetry. He composed ghazals and nazms. He was the maternal uncle of poet and screenplay writer Javed Akhtar. And we all know that Majaz was born in Rudauli, but he spent a large part of his life living in Lucknow. And well, Majaz suffered from a hearing impairment even as a child, and probably for this reason he tended to be somewhat difficult with erratic behavior. He was moody and also a loner. Lekin khair, unhone apni lifetime mein bahut hi bahut choti unki zindagi thi, lekin usme unhone bahut achhi ghazlein likhi. Kyun na ek sunte hain Jagjeet ki awaaz mein.
Dekhna jazb-e-mohabbat ka asar आज की रात मेरे शाने पे उस शोक का सर. आज की रात नूर ही नूर है, किस सिमत उठाऊं आंखें, हुस्न ही हुस्न है ताहत नजर. आज की रात हुस्न ही हुस्न.
रामानुज प्रसाद सिंह, अगर आप रेडियो श्रोता हैं तो ये नाम आपने सुना ही होगा. ये नाम आकाशवाणी के सुप्रसिद्ध समाचार वाचक का है जिनकी आज जयंती है. 1960 में आकाशवाणी से जुड़े रामानुज प्रसाद सिंह लंबे समय तक आकाशवाणी पर घर घर में सुने जाते रहे. सुबह, दोपहर और शाम के प्राइम बुलेटिनों में सालों तक समाचार पढ़ने के कारण रामानुज प्रसाद सिंह आम लोगों में एक जाना पहचाना नाम बन गए थे. वो कवि और साहित्य कुलगुरु रामधारी सिंह दिनकर के अनुज सत्यनारायण जी के बेटे यानी दिनकर जी के भतीजे थे. उनकी आवाज सुनवाते हैं आपको.
ये आकाशवाणी है, अब आप रामानुज प्रसाद सिंह से समाचार सुनिए.
Today we are also remembering Bhai Veer Singh, a poet, scholar and theologist of the Sikh revival movement who played an important part in the renewal of Punjabi literary tradition. And hum log uske alawa jo hai of course yaad kar rahe hain Ghulam Ali ko bhi. He doesn't need any introduction kyunki bahut sari memorable ghazlein unki awaaz mein humne suni hain.
Suprasiddh ghazal gayak aur Hindustani shastriya sangeet ke Patiala gharane ke jane mane sangeetkar Ghulam Ali ki baat Saira ne ki aur unhone बड़े गुलाम अली खान साहब से तालीम ली. अपनी गजलों से प्रायः खुद गजलों में प्रायः संगीत खुद देते थे और इसके अलावा उन्होंने दूसरों की भी गजलों को सुरबद्ध किया. बहुत सारी गजलें हैं, एक छोटी सी झलक आपके लिए.
चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको अब तक आशिकी गाओ जमाना याद है.
कार्यक्रम में अब बात हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय अभिनेत्री नादिरा की। अपने दौर की चर्चित अभिनेत्री नादिरा का जन्म 5 दिसंबर 1932 को हुआ और हिंदी फिल्मी पर्दे पर आत्मविश्वास से भरपूर दिखने वाली नादिरा किरदार में पूरी तरह से समा जाती थी।
And if we tell our listeners one trivia that she was among the highest paid actresses of her lifetime and one of the first Indian actresses to own a Rolls Royce. So can you imagine her popularity? और ये बहुत ही famous गाना आप background में सुन रहे हैं मुड़ मुड़ के ना देख, लेकिन हमें घड़ी को देखना पड़ रहा है, तो दीजिए देव और सायरा को इजाजत।
नमस्कार
नमस्कार।